ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद चौदहवां अध्याय श्लोक नंबर 17। समय का अभाव है, मैराथन का समय है और क्लास मैंने थोड़ी देर से शुरू की, तो हम सीधा शब्दार्थ में जाएंगे। ठीक है, शब्दार्थ
ना नहीं ही निसंदेह अग्नि आप मुखता मुख से ज्वाला से अयम यह वही निश्चय ही भगवान भगवान श्री कृष्ण सर्व यज्ञ भोग सभी प्रकार के यज्ञों के फलों का भोक्ता इज्जेत पूजा जाता है। हविष घी की आहुति से राजन हे राजा यथा जिस प्रकार विप्रमुखे ब्राह्मण के मुंह से होकर होता है उत्तम भोजन की भेंट चढ़ाकर अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। यद्यपि वे अग्नि में डाली गई आहुतियां खाते हैं फिर भी हे राजन जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना सभी कर्म यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए और यज्ञ कृष्ण को संतुष्ट करने के निमित्त होना चाहिए। भगवद गीता में अन्यत्र भी कहा गया है भुक्ताराम यज्ञ सप्तम सर्वलोक महेश्वरम वे परमेश्वर हैं और प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। यद्यपि यज्ञ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है किंतु जब अन्न तथा घी को अग्नि में न डालकर प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को और बाद में अन्यों को वितरित किया जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस विधि से कृष्ण अन्य किसी विधि की तुलना में अधिक प्रसन्न होते हैं। आज के समय में तो अग्नि तथा घी की आहुति डालकर यज्ञ करने की बहुत कम संभावना रह गई है, विशेष रूप से भारत में तो घी न होने के बराबर है। प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होनी चाहिए
ये तात्पर्य प्रभा जी ने लिखा था 50 साल पहले। 50 साल पहले प्रभा जी ने भविष्यवाणी दी थी।
प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होनी चाहिए अब एक प्रकार के तेल से बनाई जाती है किंतु यज्ञ अग्नि में तेल डालने की संस्तुति कभी नहीं की जाती है। कलयुग में अन्न तथा घी की उपलब्ध मात्रा धीरे धीरे घट रही है और लोग चिंतित हैं कि वे इनकी प्रचुर मात्रा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्रों का आदेश है यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधस। इस युग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन आंदोलन द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि संकीर्तन आंदोलन से जुड़ जाए और अपने ज्ञान तथा धन की आहुति इस आंदोलन की अग्नि में डालें। हम अपने संकीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में अर्चा विग्रह पर भव्य प्रसाद चढ़ाते हैं और बाद में उस प्रसाद को ब्राह्मणों वैष्णवों एवं सामान्य लोगों में वितरित करते हैं। कृष्ण का प्रसाद ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दिया जाता है और ब्राह्मणों एवं वैष्णवों का प्रसाद जनता को। इस प्रकार का यज्ञ जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाता है और प्रसाद वितरण होता है यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रामाणिक विधि है।
अनुवाद दोहराइए।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। यद्यपि वे अग्नि में डाली गई आहुतियां खाते हैं फिर भी हे राजन, जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न होते हैं।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञातिविदन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्विदितं श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामयां ज्ञाति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण न ही अग्नि मुखा तो यम वाय भगवान शर्म यज्ञ बुक जेता है विश्वराजन यद विप्रा मुखे होते। इस श्लोक का उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं और ये उपदेश युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। श्रीमद् भागवत में आप हर विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और इस सातवें स्कंध में नारद मुनि पिछले अध्यायों में स्पर्श कर चुके हैं कि ब्रह्मचारी का क्या कार्य होना चाहिए, वानप्रस्थ का क्या कार्य होना चाहिए और सन्यासी का क्या व्यवहार होना चाहिए। तो इन तीन विषयों की चर्चा करने के पश्चात नारद मुनि हमें इस अध्याय में शिक्षा दे रहे हैं कि आदर्श पारिवारिक जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो गृहस्थ हैं उन्हें ये अध्याय बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। तो इस अध्याय के आरंभ में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा नारद मुनि से, आप भागवतम और गीता में क्या देखते हो? प्रश्न और उत्तर, भगवान के भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार गीता में भी आप देखते हो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो हमें सदा ये जिज्ञासा रहनी चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। तो जब हम किसी संत को मिले तो ये भाव होना चाहिए, जैसे चौथे स्कंद में आप पढ़ते हो पृथ्वीराज, हालांकि वो शक्तवेश अवतार थे, जबकि कुमार आज उनके महल में आए, उन्होंने उनके चरण धोए, उनसे पूछा, क्या पूछा, ये बताइए जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। कुमार आज ने कहा कि आपके पास ये ज्ञान है, जब भी हम बताएंगे समाज के सुधार के लिए। तो इस अध्याय के आरंभ में युधिष्ठिर महाराज ने भी प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा जो आप सबको पूछना चाहिए। क्या था प्रश्न? उन्होंने पूछा कि जो हमारे जैसे अज्ञान व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है, शास्त्र के आधार पर कैसे जीवन को सफल बना सकते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कैसे जीवन को सफल बना सकते हैं, शास्त्र के आधार पर वो जानना चाहते थे कि वैदिक शास्त्र में क्या है उपदेश गृहस्थ लोगों के लिए। तो नारद मुनि उनके प्रश्न के उत्तर में शिक्षा दे रहे हैं। नारद मुनि ने कहा गृहस्थ को कमाई तो करना है, कोई नौकरी धंधा कुछ पैसे तो कमाना पड़ेगा, लाइवलीहुड रोजी तो कमानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप गृहस्थ हो तो भीख मांग कर बेईमानी करके खर्चा चलाओ, तो नारद मुनि ने कहा कि ऐसा तो कार्य तो करना पड़ेगा, रोजी तो कमानी पड़ेगी, पर उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका भोक्ता हूं। उसे क्या समझना चाहिए? उसे ये समझना चाहिए कि ये सब परम भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए आवश्यकता से अधिक परम भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो आप आगे पूछ सकते हो, तो ये ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? कौन हमें ये ज्ञान देगा कि हमें हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए? ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो नारद मुनि हमें वो उपदेश भी देते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा साधु संगत के द्वारा। इसलिए शास्त्र में कहा गया गोपीचंद हिंदुजा का स्वागत हरे वो इसलिए ओ प्रकाश हिंदुजा सॉरी। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि हमें साधु संगत में रहना चाहिए। नारद मुनि ने कहा जी रोजी कमाओ धन कमाओ, पर उतना ही रखो जितना कि आवश्यक हो। आगे जाकर श्लोकों में नारद मुनि कहते हैं जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक रखता है और भगवान की सेवा में नहीं अर्पण करता, वो व्यक्ति क्या है? चोर है शास्त्रों की दृष्टि से। हम तो शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु का अर्थ है शास्त्रों की दृष्टि से देखना। जैसे जिनकी आंखें कमजोर हैं वो चश्मा ऐनक पहनते हैं, तो हम शास्त्र की दृष्टि से हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि हमें आवश्यकता से अधिक भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, और ये ज्ञान कहां प्राप्त होगा? साधु संगत के द्वारा। शास्त्रों में साधु संगत पर बड़ा महत्व दिया गया है। चैतन्य चरितमृता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है साधु संगत सर्वशास्त्र काया, रामा माता साधु संगत सर्वसिद्धि काया, कि एक सेकंड के 14वें हिस्से के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत मिले तो आपका जीवन सुधर सकता है। उदाहरण के लिए आप प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हो, लगभग 17 साल की आयु में गए थे पश्चिम देश में केवल 40 रुपए के साथ, पर उन्होंने अपनी शुद्ध संगत देकर शुद्ध शिक्षा देकर सारे विश्व में लोगों को आकर्षित करवाया। तो इसलिए नारद मुनि ने यह तो स्थापित किया कि गृहस्थ को साधु संगत में रहना चाहिए, और आगे ये भी कहा गृहस्थ को बकायदा शास्त्र पुराण और ग्रंथों का की कथा सुननी चाहिए। ये सुनेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। जैसे भगवत में कहा गया है नास्ता प्रयेश अभद्रेश नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भावति नासि। अगर आप ध्यान से ये श्रीमद् भागवतम को रोज सुनोगे तो हृदय में जो मैल है वो दूर हो जाएगी। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेत दर्पण मार्जनम, हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ क्या है? हृदय की मैल दूर हो जाती है। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए, ना केवल जो गृहस्थ आश्रम में है, किसी भी आश्रम में हो वहां प्रयास रहना चाहिए कि हम बकायदा साधु संगत में रहे। पर साधु संगत में किस विषय पर, किस उद्देश्य के साथ? इस उद्देश्य के साथ कि हम कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा की चर्चा होगी। ये नहीं राजनीतिक खर्चा, राजनीतिक चर्चा या खेल खिला क्रिकेट की चर्चा, कृष्ण कथा होगी। वो सुनने से आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। तो इन विषयों की चर्चा करने के पश्चात नारद मुनि आगे जाकर और शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ को कैसे डिटैच होना चाहिए और आगे खाए तो क्या खाए, केवल प्रसाद। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं जो बिना भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है, केवल पाप खा रहा है। तो इस प्रकार नारद मुनि बड़े गहराई के साथ, एक तरह से आप नारद मुनि के श्लोकों को प्राप्त करते हो, दूसरी तरफ से हर श्लोक के पीछे लगभग पापा जी ने बड़ा गहरा तात्पर्य दिया है। तो जब आप श्लोक को तात्पर्य के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा सरलता से उस उपदेश को समझ पाओगे। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि केवल हम अनुवाद पढ़ें, हमारा भाव होना चाहिए कि अनुवाद के साथ तात्पर्य भी पढ़ें। प्रभुपाद जी जब इन तात्पर्यों का लिखते थे तो अपने समक्ष रखते थे महान आचार्यों के तात्पर्य, उनको पढ़कर अपने भावों को जोड़कर पापा जी ने हमें तात्पर्य दिया है। तो आज के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं नारद मुनि? नारद मुनि कह रहे हैं कि परम भगवान असली भोक्ता हैं। यही विषय आपको भागवतम के अनेक श्लोकों में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक एक ही संदेश दिया जा रहा है, शुद्ध भक्ति माध्यम है। व्यास देव ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, सार के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था कि मेरे कार्य में कोई कमी रह गई है, कोई टूटी रह गई है, जब ये विचार कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर, तो वहां कौन पहुंच गए? नारद मुनि, जिन्होंने उन्हें कहा कि तुम शुद्ध भक्ति पर बल दो। और इसके पश्चात उन्होंने हमें ये भगवतम का ज्ञान दिया। तो ये श्लोक में कहा जा रहा है कि परम भगवान ही असली भोक्ता है। भोक्ता नाम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। ये श्लोक कहाँ प्राप्त होता है? हाँ, गुड, पांचवें अध्याय के आखिरी श्लोक। तो परम भगवान है असली भोक्ता। तो गृहस्थ को समझना चाहिए कि असली भोक्ता कौन है? केवल परम भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं। गृहस्थ ही नहीं, सबको समझना चाहिए कि असली भोक्ता कौन है? परम भगवान। आगे कहते हैं यज्ञ इत्यादि, भगवान जो आप भोग लगाते हो अगर योग्य ब्राह्मणों द्वारा अर्पित किया जाए तो उसे स्वीकार करते हैं। श्लोक में योग्य ब्राह्मण क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति को बनना चाहिए गुणों के आधार पर, ये नहीं कि हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो हम भी ब्राह्मण बन गए। अगर आप में योग्यता है, गुण है, तो आप अपने आप को ब्राह्मण बुला सकते हो। तो कई बार भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु पहले महान आचार्य थे जिन्होंने इस बात स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित। एक समय ठाकुर भक्ति विनोद जी को निमंत्रण दिया था ब्राह्मणों की सभा में उपदेश देने के लिए कलकत्ता में। भक्ति विनोद ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को भेजा। भक्ति सिद्धांत जी ने अपना भाषण आरंभ किया ब्राह्मणों का गुणगान करने के श्लोकों द्वारा, ये स्थापित किया कि ब्राह्मणों का समाज में होना बड़ा आवश्यक है। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है शेर के साथ, जो कि माना जाए देखा जाए कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके पश्चात भक्ति सिद्धांत जी ने ये स्थापित किया श्लोकों पर आधारित कि ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर, पैदाइश के आधार पर नहीं। जब प्रभुपाद जी विदेशों से लौटे अपने विदेशी भक्तों के साथ, कईयों ने भारत में आरोप लगाया भक्तिवेदांत स्वामी ने हमारी संस्कृति की बेइज्जती कर दी है, इन बच्चों को ब्राह्मण बना दिया है। प्रभुपाद जी ने स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुण पर आधारित। इस श्लोक में भी नारद मुनि क्या कह रहे, योग्य ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण मतलब कि असली ब्राह्मण, नाम का ब्राह्मण नहीं। चतुर्वर्ण माया श्रेष्ठम गुण कर्म गुणों के आधार पर। और भगवद गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मणों, योग्य ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है। समोदम उतप सोच शांति अर्जुन में वच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्या ब्रह्म कर्म सभाग। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आपको जादू कर सकते हो, चमत्कार दिखा सकते हो, क्योंकि ये सोचा जाता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति है उसमें जादू की योग की शक्ति भी होगी। पापा ने कहा बड़े विनम्रता भाव से, नहीं मैं कोई जादू तो नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो इसमें बड़ी रुचि थी, क्या मैंने हजारों बच्चों को ब्राह्मण बना दिया है। तो ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुणों पर आधारित। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं, सबसे पहले तो एक नाता कर्मणों ने आता लोग हम कर्म बांधना, ये श्लोक तीसरे अध्याय में प्राप्त होता है, जहां भगवान कहते हैं अगर तुम हर कार्य विष्णु की प्रशंसा के लिए नहीं करोगे तो क्या उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप सरकार का टैक्स नहीं भरोगे तो दंड हो सकता है ना, आजकल रोज अखबारों में पढ़ते हो जेल में भेज देंगे तुम्हें, तो यामराज जी भी जेल में भेजते हैं। हर कार्य का यज्ञ उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रशंसा। भगवान है असली भोक्ता और ये होना चाहिए हमारा भाव। आगे ये भी कहा गया है, पापा जी कहते हैं भगवान के लिए अगर कोई भोग भी बनाए तो भोग बनाना चाहिए कैसे, घी के साथ। और ये तात्पर्य जो कि पापा जी ने लगभग अंदाजे से 50 साल पहले लिखा होगा, ये पापा जी ने कहा कि भारत में घी की प्राप्ति भी बड़ी कठिनाई से होती है। और घी मिल में भी जाए देखना पड़ता है, बनावटी घी तो नहीं है, असली घी है। तो संक्षेप में ये शिक्षा दी जा रही है कि परम भगवान है असली भोक्ता। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि इस कलयुग में क्या है यज्ञ, ये संकेत नहीं आ गया। कलयुग में समग्र दुनिया के एक सरल माध्यम है और चैतन्य महाप्रभु ने इस साधन के ऊपर बहुत बल दिया है। तो ये ज्ञान आप कैसे बचाओगे प्रजा को, लोग आज अज्ञानता में हैं। जैसे हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य अज्ञानांजनाश्रय, हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर गुरु साधु की संगत से यह अज्ञानता दूर हुई है। जैसे अंधेरापन दूर होता है कैसे, कैसे रोशनी के कारण, कृष्ण सूर्य समा माया हाया निकाला, जहां कृष्ण था ही नहीं माया निकाला, जहां कृष्ण है वह माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जल रोशनी है وہاں اندھیرا پن محسوس نہیں ہوتا. تو آج اگر اس وشو میں کسی چیز کی کمی ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ اس دیویہ گیان کی کمی ہے. اور اسی لیے پرم بھگوان کی ہاردک اچھا ہے کہ ہم سب یہ گیان دیں. کیوں؟ کیونکہ بھگوان چاہتے ہیں ہر بد جیو سکھی ہو. گیتا کے 18 ادھیائے میں بھگوان ہمیں کیا شکشا دیتے ہیں کہ آپ کیسے ان کے پریا بن سکو. اگر ہم آپ سے پوچھیں آپ اسے کون کون بھگوان کے پریا بننا چاہتے ہو؟ سب پریا بننا چاہتے ہو تو پریاس کرنا پڑے گا. بھگوان کیا کہتے ہیں 18 ادھیائے میں؟ یادم پرم ہم گرم. سب بھکتوں میں سب سے پریا کون ہے؟ کون ہے؟ اسے زیادہ پریا نہ کہ ہوا ہے نہ ہوگا. تو پرم بھگوان شری کرشن ماتا پرم نمیر سوری پرم بھگوان شری کرشن کیا کہتے ہیں؟ سب بھکتوں میں سب سے پریا کون ہے جو میرا پرچار کرتا ہے؟ چیتنیہ مہاپربھو جو بھی سوئم بھگوان ہے. شری کرشن چیتنیہ رادھا کرشن نایانیا. رادھا کرشن پرکٹ ہوئے کس روپ میں؟ چیتنیہ مہاپربھو کے روپ. اور چیتنیہ مہاپربھو جی کے وشے میں کہا گیا ہے پتیت پوان ہیتو تو اوتارا. آپ اوتارت ہوئے ہو کس لیے؟ پتیتوں کا ادھار کرنے میں. تو چیتن ہے مہاپربھو نے بھی پرچار کی سیوا پر بہت ہی زیادہ بل دیا. چیتن مہاپربھو نے کیا کہا؟ جائے رکھو کہو کرشنا اپدیش. جیسے بھی تم ملو تم اسے کیا کہو؟ کرشنا کا اپدیش دو. چیتنیہ مہاپربھو دکشن بھارت کی یاترا میں تھے. پہلے چیتنیہ مہاپربھو نے بڑے مایا والی سروپوں پر چاریا کو آکرشت کیا بھکتی یوگ کے پرتی. اس کے بعد مہاپربھو گئے دکشن بھارت کی یاترا میں. ان کی دکشن بھارت کی یاترا میں جب تھے دور دور سے لوگ آتے تھے انہیں دیکھنے کے لیے سننے کے لیے. اور ان کا ہری نام سنتے ہی اتنے آکرشت ہو جاتے تھے کہ وہ بھی ہری نام شروع کر دیتے تھے. اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے ستھانوں میں دوسرے ویکتی انہیں دیکھ کر وہ بھی ہری نام لینا شروع کر دیتے تھے. اس پرکار پورا دکشن بھارت ویشنو بن گیا تھا اور آج بالکل الٹا ہو گیا ہے. تو چیتنیہ مہاپربھو ایک براہمن کرما کے گھر میں ٹھہرے تھے. کرما نے کہا میں یہ گھر وغیرہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. مہاپربھو نے کہا میرے ساتھ پتی بچے تھے چھوڑ کر آنے کی آوشیکتا نہیں. گھر میں رہو ہری نام لو اور گیتا کا پڑھو. ایک بھکت تھا مہاپربھو کا جن کا نام تھا واسدیو وپر. واسدیو وپر کو کھوڑ کی بیماری تھی. پورا شریر پھونسی اور پس سے بھرا ہوا تھا اور پورے شریر میں کیڑے تھے. اور واسدیو وپر اتنے دیالو تھے کہ جب کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا اسے اٹھا کر جوڑ دیتے تھے شریر کے ساتھ. تو چیتنیہ مہاپربھو جب واسدیو کرما براہمن کے گھر سے نکلے تو اس سمے واسدیو وپرا ان کے گھر میں پہنچا. جب اسے پتا لگا کہ مہاپربھو نکل چکے ہیں وہ شوک میں لگ بھگ بے ہوش ہو گیا. महाप्रभु अंतर्यामी है, वो समझ पाए उनका भक्त अत्यंत दुखी है, तो वो लौटे। वो लौटे तो जब वो लौटे उन्होंने वासुदेव विप्र को गले लगाया। जैसे ही गले लगाया वासुदेव विप्र की खून की बीमारी तुरंत समाप्त हो गई और वो एक खूबसूरत युवक बन गया। और वो समझ पाए ये महाप्रभु की कृपा है। और फिर उन्होंने उन स्तुतियों का वर्णन किया जिनका वर्णन सुदामा ब्राह्मण ने किया था। जब वो लौटे अपने स्थान पर और उन्होंने देखा वो कुटिया महल बन गई, उनकी पत्नी जो फटी साड़ियों में थी, बड़ी महंगी सी रेशम की साड़ियों में सजी हुई थी, तो सुदामा ब्राह्मण समझ पाए, ये हो पाया किसकी कृपा से, उनके गणेश मित्र के कारण। तो वासुदेव विप्र जब खूबसूरत युवक बन गया तो उनको डर था कि कहीं मेरे में घमंड नहीं आ जाए, क्योंकि पहले वो इतने बदसूरत थे, इतनी बदबू आती थी उनके शरीर से कि उनके निकट भी कोई नहीं पहुंचता था। वहां महाप्रभु की कृपा से खूबसूरत युवक बन गए हैं, तो उनको डर था कि मैं घमंडी नहीं हो जाऊं। अक्सर आप देखते हो अगर कोई व्यक्ति धनी हो, खूबसूरत हो, वो पढ़ा लिखा हो तो क्या वो घमंडी हो जाता है। तो इसे महाप्रभु से पूछा अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे में घमंड नहीं आ जाए और मैं विनम्र भाव से जी सकूं। तो महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम का उच्चारण करो और सदा गीता भागवत का संदेश का अध्ययन करो और उपदेश दो। इस प्रकार तुम हमेशा विनम्र भाव में रहोगे। तो इस लीला के तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बोलते लिखते हैं कि जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ उसी प्रकार इस संस्था के हर भक्त का भी उद्धार हुआ है। तो इस प्रकार इस संस्था के हर भक्त का उद्धार हुआ है। तो हर भक्त को हरिनाम का जाप लेना चाहिए और हरिनाम की महिमा का प्रचार करना चाहिए। तो ये जो प्रचार के सेवा है इसकी महिमा शास्त्रों में है। प्रचार की सेवा पर बल क्यों दिया गया है, क्योंकि परम भगवान की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर, क्योंकि उनका जन्म मुसलमान खानदान में हुआ था, उन्होंने कभी जगन्नाथपुरी मंदिर का अंदर प्रवेश नहीं किया, रूप सनातन ने भी नहीं किया था, क्योंकि वो एक समय मुसलमान राज्य के शासन में सेवा कर रहे थे। तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास की कुटिया में गए, उन्होंने हरिदास से कहा हरिदास ये बोलो कैसे इन मलेच्छों का उद्धार होगा। जैसे परम भगवान की चिंता क्या है, सब जीवों को वापस लाना। तो प्रभु महाप्रभु ने कहा हरिदास ये कहो यवनों मलेच्छों का उद्धार कैसे होगा। हरिदास ने क्या कहा प्रभु चिंता ना कार्या, हे भगवान आप चिंता मत करो। हाँ नाम बालिक है नाम बात है, लोग अपराध रहित हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो आपके धाम में लौट पाएंगे। तो ये ज्ञान कहाँ है, इन ग्रंथों में है। तो आप जैसे जानते हो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा को बड़ा महत्व दिया. क्यों? क्योंकि ये हमारी परंपरा में आ रहा है. भगवत गीता में भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो प्रचार कर रहा है. चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक उदाहरण हैं. एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास को कहा, हरिदास नित्यानंद आओ इधर, घर घर जाओ और लोगों को संदेश दो. क्या? बोलो कृष्ण, भाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ. कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? भगवद गीता में. तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास और नित्यानंद ने प्रचार आरंभ किया. कई घरों में वो गए, उनका बड़ा हार्दिक स्वागत हुआ, बड़ा अच्छी तरह स्वागत. उन्होंने कहा, सन्यासी आ गए हमारे घर में, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हो? उन्होंने कहा, हरि नाम लो. उन्होंने स्वीकार कर लिया, हरि नाम शुरू कर दिया. कई घरों में गए, लोगों ने कहा, ये निमाही तो पागल हो गया है और हमको भी पागल बनाना चाहता है, इसलिए इन दो को भेज दिया. कई घरों में गए, लोगों ने कहा, जब हमने प्रयास किया था शिवा संगत में प्रवेश करने के लिए, तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया. क्योंकि जब महाप्रभु हरिनाम कीर्तन कर रहे थे शिवा संगत में, जहां की अपनी अद्भुत लीला भी प्रकट कर रहे थे, केवल जो उनके प्रिय भक्त थे उन्हें ही सुविधा दी थी उपस्थित होने के लिए. तो इन लोगों ने कहा, हम जब आए थे तुमने अंदर आने नहीं दिया, हम अभी तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे. और कई घर में गए तो लोगों ने कहा, लगता है जासूस आए हैं सन्यासी के वस्त्र में, ये कोई बड़े चोर के प्रतिनिधि हैं, देखेंगे हमारे घर में क्या है, फिर आएंगे दाल को चुराने के लिए. और ये आरोप किसको दे रहे थे? आरोप किसको दे रहे थे? हरिदास और नित्यानंद को. तो जब आप प्रचार के लिए जाते हो, ये उम्मीद मत करो हर व्यक्ति आपका साथ देगा. जैसे शाम के समय शराब की दुकानों में भीड़ रहती है, ये मत समझो इतनी भीड़ होगी सब लड़ेंगे, नहीं 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 गीता हमें चाहिए, दूसरा व्यक्ति कहे नहीं 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 मेरा नंबर पहले है. जब आप प्रचार करोगे कई साथ देंगे, अगर कोई साथ नहीं देता तो आज भक्तों की संख्या बढ़ती नहीं. अगर भक्तों की संख्या बढ़ रही है सारे विश्व में, उसका एक कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव. लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं और समझ पाते हैं जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए. तो जब आप प्रचार में जाओगे, चाहे आप बुक टेबल में हो, घर घर जा रहे हो, कई तो आपका स्वागत करेंगे, कहेंगे आ गए हो, हाँ गीता हम लेंगे, पर कई आपकी बेइज्जती भी करेंगे. दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? हर साल आ जाते हो हमारा सैर खाने के लिए. आपको सैर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हम प्रचार में जाते हैं वो ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती तो उत्साह थोड़ा कम हो जाता है. और कई जगह आप जाते हो, लोग आरोप भी लगाते होंगे, तुम्हें कमीशन मिल रहा है क्या? महाप्रभु को कहा, नित्यानंद हरिदास को कहा, तुम चोर के प्रतिनिधि हो. तो कई जगह आदर मिलेगा, कई जगह अपमान होगा. पर भक्त को दोनों स्थितियों का सामना समानता के साथ करना चाहिए. हम जब प्रचार के लिए जाए हमें बड़ा उत्साहित होना चाहिए. और प्रचार में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो प्रचार कार्य शुरू करने से पहले प्रयास करो ध्यान पूर्वक अपने 16 माला का जाप समाप्त करने के लिए. अगर आप माला का जाप समाप्त करोगे और थोड़ा शास्त्र पढ़ोगे, युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से पहले तो आप देखोगे आपका प्रचार का उत्साह सारा दिन रहेगा। इसलिए प्रचार केवल प्रयास पर निर्भर नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहा पवित्रता ही शक्ति है। तो हमें प्रचार का कार्य आरंभ करने से पहले प्रयास करना चाहिए कि सुबह के समय हम माला का जाप करें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, और फिर प्रचार में जाओगे तो आपके मन में सदा ये भाव रहेगा कि मैंने पतितों का क्या करना है, उद्धार करने में सहयोग देना है। प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के विषय में कहा, इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक पढ़ ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। पूरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक श्लोक भी ध्यान से पढ़ ले। और इन ग्रंथों के विषय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मान लो गीता जयंती के उपलक्ष, जैसे आप जानते हो कि गीता जयंती का महीना है और एकादशी 10 तारीख गीता जयंती है, कुरुक्षेत्र में सरकार बहुत बड़ी योजना कर रही है जिसमें इस्कॉन के भक्त भी उपस्थित हैं सहयोग देने के लिए, तो गीता जयंती के उपलक्ष हम गीता का मैराथन करते हैं भारत में और विदेश में। तो ये जो है सेवा, ये समाज की सेवा है। और जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब उत्साह के साथ जुड़िए इस सेवा में। रूपक गोस्वामी कहते हैं, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। उत्साह से प्रचार करोगे तो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकोगे। और ये नहीं सोचो कि अगर आपने इस महीने 2 लाख गीता बांटी या 3 लाख, तो अगले महीने 3 लाख नए भक्त आ जाएंगे। नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है बीज बोना। जब हम एक गीता देते हो किसी को, आप एक रूप से उस व्यक्ति का भक्ति का जीवन आराम कर देते हो। कुछ पता नहीं कब पड़ेगा। मैं एक स्थिति को जानता हूं जहां किसी ने गीता खरीदी थी 10 साल पहले। 10 साल किसी ने घर में गीता खोली भी नहीं। 10 साल बाद एक दिन अचानक घर के एक सदस्य ने गीता खोली, गीता पढ़ना शुरू किया, बड़ा प्रभावित हुआ गीता यथारूप से, फिर दूसरों को दिया घर में, अंत में पूरा घर बन घर भक्त बन गया। और कब यह था, 10 साल पहले किसने गीता ली थी। अमेरिका में एक हमारे एक भक्त हैं, तो मैंने उनसे पूछा था भक्त कैसे माने। उसने कहा कि एक दिन वो अपने मित्र के साथ मोटर में जा रहा था फ्लोरिडा में, और उसके मित्र के मोटर के पीछे एक भगवद गीता की कॉपी थी। ये अमेरिकन लड़का था, इसने कभी गीता का नाम भी नहीं सुना था, एक बार सुना था कॉलेज में। तो इसने अपने मित्र से पूछा, मैं ये भगवद गीता मांग सकता हूं थोड़ी देर के लिए? उसके मित्र ने कहा, वाई बोरो टेक इट, मांगते क्यों, ले लो, मेरी गीता में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो एक बड़ा उत्साहित हरे कृष्ण का साधु मिला था, वो इतना उत्साहित था कि मैं नहीं नहीं बोल पाया, मैंने गीता ले ली, पर मेरी कोई रुचि है तुम ले लो। फिर उसके मित्र ने लिया, पढ़ा और भक्त बन गया। पर इस लीला में संदेश क्या है, उसके मित्र ने गीता ली क्योंकि उसने देखा वो भक्त बड़ा उत्साह से बेच रहा था, तो उसने देखा कि बड़ा उत्साहित है और बड़ा पवित्र नजर आता है, तो गीता ले ली। तो ये जो मैराथन की सेवा है, एक रूप से श्री प्रभुपाद जी की खास कृपा है हम सबको सेवा में जोड़ने के लिए। तो सारे और इस सेवा में केवल जो अत्यंत भाग्यशाली भक्त हैं उन्हें ही ये मौका मिल रहा है कि क्योंकि आप बार बार पढ़ते हो सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है। तो ये प्रचार की सेवा इसलिए है क्योंकि वैष्णव भक्त में यही भाव रहता है कैसे पतितों का उद्धार किया जाए। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, कई आध्यात्मिकवादी जंगल में जाना चाहते हैं, पहाड़ों में जाना चाहते हैं, मौन व्रत रखते हैं, पर मेरी इनमें कोई रुचि नहीं। मैं क्या करना चाहता हूं? सबका उद्धार प्रचार करना चाहता हूं और सबका उद्धार करना चाहता हूं। तो आप सब से निवेदन है, आप सब जुड़िए बड़े उत्साह के साथ, और अगर प्रयास करोगे तो भगवान सफलता देंगे। और हम प्रभा जी ने कहा कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो? इन ग्रंथों का वितरण। पर आप पूछ सकते हो, प्रभा जी ने क्यों कहा कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, इन ग्रंथों में क्या है जैसे प्रभा जी प्रसन्न होंगे? इन ग्रंथों में शुरू से अंत तक कृष्ण भगवान की शिक्षा है, शुरू से अंत तक एक ही संदेश है, परम भगवान के शरणागत होना। तो जो भक्त है भगवान का, हम कभी कहते हैं गुरु की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, हम सब का मूल संदेश क्या है? कृष्ण भगवान की सेवा। प्रभुपाद जी ने शुरू से अंत तक एक ही प्रचार किया, सर्वधर्म परित्यज्य मामे कृष्ण मृजा, कृष्ण भगवान की सेवा। तो इसलिए अगर हम लोगों को जोड़ेंगे कृष्ण भगवान की सेवा में तो उसके द्वारा भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो भगवान हमें मौका दे रहे हैं उनके सेवा में जुड़ने के लिए, भगवान हमें मौका दे रहे हैं उनके प्रिय भक्त बनने के लिए। तो जो बुद्धिमान है, भाग्यवान है, वो क्या कहेगा? हाँ, मुझे इस सेवा में अवश्य ही जोड़ना चाहिए। और जो आलसी दुर्भाग्यशाली भक्त है वो क्या कहेगा? मैं तो बीमार हूं, पेट में दर्द हो रहा है, कोई बहाना ढूंढेगा जिसके कारण प्रचार की सेवा से बजाय अंत में बहाना ढूंढने से आपका ही नुकसान है। तो सब जुड़ोगे मैराथन में? और ये बात देखा है मैंने भारत में भी, मैराथन के महीने में हमारे आलसी भक्त भी उत्साहित हो जाते हैं जो वैसे आलसी हैं। और जैसे मैं हर साल कहता हूं, भारत में इस समय सबसे अच्छा मौसम है, पर विदेशों में बर्फ है, इतनी ठंड है, ये भय रहता है पुलिस वाले पकड़ नहीं लें। उस वातावरण में हमारे भक्त ग्रंथों को बांट रहे हैं। एक खाजी किसान में भक्त हैं कृष्ण नायक का, 20 साल से रोज जाती है बीमार या ना बीमार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जिस दिन मैराथन शुरू हुआ उस दिन उसने मुझे फोन किया, आशीर्वाद दीजिए। फिर रात को फोन आया, आज मैंने 50 गीता पार्टी, और मेरे साथ जो लड़की थी उसको पुलिस पकड़ के ले गई। फिर हमें 2 घंटा पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा उसे छुड़ाने के लिए, क्योंकि कई देशों में प्रचार करने की भी इजाजत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, भारत में मौसम भी अच्छा है, बर्फ नहीं है कि बर्फ है बॉम्बे में, और पुलिस का तो कोई भय तो नहीं है। पुलिस आपको कह देगी यहां नहीं खड़े रहो, पर जेल में तो नहीं डालती। तो कोई भय नहीं है, तो कोई कारण नहीं है आप लोग उत्साहित नहीं हो। तो सब उत्साह के साथ इस मैराथन में जुड़िए, प्रभा जी ग्रंथों को पहुंचाइए। और आप अगर सोचोगे हम तो हर साल मैराथन करते हैं, अभी किधर जाएंगे, कोई नया रास्ता चाहिए, अगर आप बड़े ध्यान से श्रद्धापूर्वक इस प्रकार का चिंतन करोगे भगवान आपको बुद्धि देंगे। तो आप सब जुड़िए इस मैराथन में प्रभा जी की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस क्विकली।
जब किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ना
दस मिनट के लिए पढ़ लो, एक श्लोक पढ़ लो गीता का, एक भगवतम का, तो थोड़ा पढ़ के जाओ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जल्दी फिर।
हरे कृष्ण महाराज, तात्पर्य में लिखा था कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए मूवमेंट को।
सॉरी, क्या लिखा है?
प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था कि ज्वाइन करना चाहिए ये संस्था में और संकीर्तन बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब कोई ज्वाइन करते हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल भी समझते हैं, सोचते हैं बहुत ही गलत कर दिया, ये क्या कर दिया, तो बड़ा मुश्किल होता है भक्तों के लिए महाराज, तो कैसे करें?
अरे हम ज्वाइन भी करें, हम ज्वाइन करके किसकी सेवा कर रहे हैं? कृष्ण भगवान की सेवा। हम लोग कई बार कहते हैं गुरु सेवा, प्रभुपाद सेवा, तो गुरु क्या कहता है? कृष्ण की सेवा करो। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कृष्ण की सेवा करो। तो ये बात जरूर है कि कई बार घर वाले इसका विरोध करते हैं। अगर आप घर में कहो हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, हमें 1,00,000 रुपये महीना तनख्वाह मिल रही है, कहेंगे फिर ठीक है। अगर आप कहो मंदिर में, पर घर वाले ये नहीं समझ पाते, अगर उनके घर में एक व्यक्ति भी भक्त बन जाए उसकी भक्ति के द्वारा 13 पीढ़ी तक सबको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप घर वालों का उद्धार करना चाहते हो तो आप सब अच्छे भक्त बनो और आपके भक्ति का लाभ माँ बाप दादा दादी 13 पीढ़ी तक सबको मिलेगा। अगर आप 10,00,000 रुपये दे दोगे वो आज 10,00,000 रुपये लेंगे और खर्च देंगे, पर अगर आप भक्ति करोगे तो आप अपना द्वार भी खोलोगे उनका द्वार भी। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओ देव, आई एम सॉरी, यस।
यहाँ पर श्लोक बताया गया कि भगवान प्रसन्न होते हैं जब ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए। गृहस्थों का धर्म है कि ब्राह्मणों को वैष्णवों को भोजन खिलाए, तो ये वैष्णव लोग बिना प्रसाद कैसे खा सकते हैं? पहले भगवान खिलाएंगे तभी खाएंगे ना, हो गया।
I'm sorry. क्या क्वेश्चन है?
यहाँ कह रहे हैं कि अग्नि के मुख से आने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि ब्राह्मणों के मुख के आने से।
प्रभुपाद जी कहते हैं योग्य ब्राह्मण,
हाँ, लेकिन
क्वालिफाइड ब्राह्मण।
मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण लोग तो केवल प्रसाद खाते हैं ना, तो पहले भगवान को अर्पण करेंगे तब खाएंगे ना।
मतलब कि जो ब्राह्मण है, जो भक्त हैं, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही खाते हैं।
भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ।
मतलब कि ब्राह्मण पहले भगवान को खिलाते हैं, जो असली ब्राह्मण है वो खुद थोड़ी खाएगा, पहले भगवान को खाएगा फिर खुद खाएगा।
भगवान फिर कैसे खाएंगे? वो कहते हैं मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ।
भगवान कैसे खाएंगे?
कहते हैं मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ।
हाँ, ब्राह्मणों के मुंह से, मतलब कि जब ब्राह्मण कहते हैं मंत्र के उच्चारण से आप स्वीकार कीजिए तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को अर्पण करने के लिए योग्य ब्राह्मण चाहिए, जैसे मंदिरों में जो पूजा करते हैं योग्य ब्राह्मण होने चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, देन वी स्टॉप। यस,
हरे कृष्णा महाराज जी। गृहस्थ को भगवान और भक्ति कैसे अपनानी चाहिए, इस पर आपने बड़ी सहजता से प्रकाश डाला।
ये प्रकाश नारद मुनि ने डाला है, हमने केवल
थैंक यू
हमने केवल तोते जैसा रिपीट किया।
इसी आप तोते जैसा रिपीट किया, इसलिए आपका आवाज इतना और कहने का ढंग इतना मीठा था, आप तोते जैसा बोले इसलिए। और महाराज जी, गृहस्थों का एक सहज प्रवृत्ति होती है कि वो भगवान से बिना गिने हुए सारी चीजें चाहता है, लेकिन
बिना गिने हुए
चाहता है कि सब चीजें मिलते रहे भगवान से, पर नाम और जप गिन के करना चाहता है, इस प्रवृत्ति से कैसे छुटकारा पाए?
इसलिए नाम लेने से हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध हृदय हो जाएगा आप समझ पाओगे हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक हो। इस ज्ञान की आवश्यकता है जो प्रचार के माध्यम से प्राप्त होगी। जैसे आज इस्कॉन के साथ हजारों गृहस्थ दीक्षित हैं सारे विश्व में, तो इस स्थिति में वो कैसे पहुंचे? पहले किसी ने उनको ग्रंथ दिया, उन्होंने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, साधु संगत में आना आरंभ किया और फिर उन्होंने कहा वहां भी दीक्षा के योग्य है। तो प्रचार की आवश्यकता है। अब वो मैराथन कर रहे हो?
हाँ महाराज।
किसके अकेले या किसी के साथ?
नहीं, मैं खुद ही परचेज कर लेता हूँ।
कितनी गीता पाठ हो गई है महीने?
मैं इस बार 100 खुद परचेज करके अपने मित्रों को दे दूंगा।
कोशिश करो दुगना करने के लिए।
कोशिश करेंगे महाराज जी।
ओके, पापा जी कहते थे डबल इट।
करेंगे ना, वो भी कर सकते हैं।
ओके, समय की शांत भक्त मैराथन की प्रभा की श्री राधा राज की गौर प्रेमानंद।